हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रिया सिंह है और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी किताब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है राजस्थान के गौरव। और हमने इस चैप्टर में देखा राजस्थान के जन नायकों को और राजस्थान के लोक देवताओं को। और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था राजस्थान के सामाजिक सुधारकों के बारे में पढ़ना। और इसी सीरीज में हमने लास्ट क्लास में जहां पर एंड किया वो टॉपिक था आचार्य भिक्षु का। हमने इस टॉपिक को केवल रीड किया था और समय की कमी के वजह से मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी इस टॉपिक को डिटेल में। तो चलिए समझते हैं कि आचार्य भिक्षु के बारे में हमें अपनी इस किताब से क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जो समझने वाली बात ये है कि आचार्य भिक्षु हिंदू धर्म के या मुस्लिम धर्म के समाज सुधारक नहीं थे। तो इनका धर्म क्या था? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5th century BC में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जिसमें नए नए धर्म का ओरिजिन हो रहा था ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईस्ट की कंट्रीज हो, वेस्ट की कंट्रीज हो, या फिर मिडिल वेस्ट की कंट्रीज हो। तो जो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो इंडिया में 5th century BC में 2 न्यू रिलीजन्स का ओरिजिन हुआ, जिसमें से बुद्धा और महावीर, ये दोनों बहुत पॉपुलर हुए एज अ प्रचारक, जिनको हम कहते हैं हिंदी में। और बुद्धा ने बुद्धिस्ट धर्म का एस्टेब्लिशमेंट किया था, वैसे ही महावीर जी ने जैन धर्म का एस्टेब्लिशमेंट किया था। और आचार्य भिक्षु भी इसी जैन धर्म के फॉलोअर थे और इनका जो बर्थ प्लेस है वो मारवाड़ रीजन के किसी गांव में पड़ता है। इनका जो बर्थ ईयर है वो है 1783 और इन्होंने 25 इयर्स की एज में मार्गशीर कृष्णा 12 विक्रम संहिता 1808 में एक गुरु के अंडर शिक्षा लेना शुरू कर दिया, जिनका नाम था आचार्य रघुनाथ जी। इन्हीं के कम्युनिटी में ये मुनि बन गए और लगभग 8 साल के लिए वो अपने गुरु आचार्य के अंडर में ट्रेनिंग लेते रहे, जिसको हम हिंदी में सानिध्य कहते हैं। और उस टाइम पर जो उनके आचार्य रघुनाथ जी थे वो काफी पॉपुलर थे। और उसका रीजन ये था बच्चों, क्योंकि उस टाइम पर जनरली ये देखा जा रहा था कि जो साधु संत महात्मा होते थे वो अपनी ड्यूटी से, अपने रास्ते से बहुत करप्ट हो रहे थे और करप्शन के चलते जो उनके लिए सही नहीं था वो सभी काम करते थे, जैसे कि बहुत ज्यादा कपड़ों को इकट्ठा करके रखते थे, उनके अंदर लालच आ गई थी और इसी के चलते वो लोग बहुत अनाप शनाप यानी कि फिजूल के खाना खाते थे, उनके जो डाइट में नहीं रहता था वैसा खाना खाते थे। कहने का मतलब है कि साधु संतों के लिए ये माना गया है कि उनको सादा भोजन करना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, या फिर ज्यादा पैसों का कलेक्शन या फिर किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स का कलेक्शन नहीं करना चाहिए। और उस टाइम पर जो साधु संत हो रहे थे वो सभी इन सारे रूल्स को तोड़ करके बहुत करप्ट बिहेवियर करते थे। और इसी के वजह से ये जो आचार्य रघुनाथ जी थे बहुत पॉपुलर हुए, क्योंकि ये ऐसा कुछ भी करप्शन का काम नहीं करते थे। और इसी वजह से इनके बहुत सारे लोगों के साथ डिबेट रहते थे, डिफरेंस इन ओपिनियंस होते थे। और एक बार शिष्य इनका जो था, इन्होंने भेजा उनको लीडर बना करके कि तुम जाओ और अनेक लोगों को ऐसा बताओ कि वो वापस से मेरे अंडर यानी अपने गुरु के अंडर सानिध्य ले ले। पहले उनके जो शिष्य थे गए, उन्होंने समझाया, लेकिन बाद में वो खुद भी उन्हीं सारी चीजों में लीन हो गए जिसको हम मानसिक संघर्ष कहते हैं, यानी वो मेंटली वीक प्रूव हुए अपना काम करने में, लोगों को कन्विंस करने में, और खुद बाद में वो खुद करप्शन में इंडल्ज हो गए। और आचार्य भिक्षु ही वो शिष्य थे जो कि अपना रास्ता भटक गए थे। लेकिन बाद में जब आचार्य भिक्षु ने जैन शास्त्रों का डेप्थ में नॉलेज गेन किया, यानी गहराई से जैन शास्त्रों का मंथन किया, तब उनको रियलाइज हुआ कि वो अपने काम से, कर्तव्य से भटक रहे हैं, और इसीलिए बाद में उन्होंने फिर से अपने आचार्य के अंडर सानिध्य पाने का प्रयास किया। और जब चातुर्मास समाप्त हुआ तो वो वापस से रघुनाथ जी के पास गए। उन्हें मटेरियलिस्टिक जो पोजीशन थी उसका इंट्रोडक्शन कराया, लेकिन आचार्य रघुनाथ जी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत कोशिश की भीखड़ जी ने यानी भिक्षु ने कि वो आचार्य के अंडर अपना ट्रेनिंग पूरा कर सके, सानिध्य ले सके, लेकिन जब रघुनाथ जी ने ऐसा नहीं करने दिया तब उन्होंने रघुनाथ जी से अपने रिलेशन जो है वो ब्रेक कर लिए। और 1760 में जोधपुर के बाजार में एक खाली दुकान लेकर के बहुत सारे भिक्षुओं को इकट्ठा करके उन्होंने धार्मिक क्रिया करना शुरू कर दिया, यानी रिलीजियस एक्टिविटीज में इंडल्ज हो गए। और उस टाइम पर भिक्षु के साथ यानी जो भिक्षु को हेल्प कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनमें 13 और साधु थे, यानी 13 साधु और थे। और इसी डिस्कशन में ये जो रिलीजियस एक्टिविटीज वो कंडक्ट करते थे, तो एक बार जोधपुर के दीवान फतह मल उसी रोड से गुजर रहे थे, उसी रास्ते से गुजर रहे थे, और जब उन्होंने डिस्कशन में पार्ट लिया तो उनके इसी डिस्कशन को लोगों ने 13 पंथी कहकर के बुलाया, क्योंकि वहां पर 13 श्रावक थे और 13 साधु थे, तो उनको क्या कहा गया, 13 पंथी। लेकिन इस पर बहुत सारे लोगों ने भीखड़ जी और उनके फॉलोअर्स को 13 पंथी कर चढ़ाना शुरू कर दिया, यानी लोगों ने उनको टीज करना स्टार्ट कर दिया, क्या कहकर, 13 पंथी। लेकिन भीखड़ जी जो थे वो अब समझ चुके थे कि भगवान के आगे कोई भी बड़ा नहीं है। उनको ये पता चल चुका था कि शब्द में या नाम में कुछ नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने लोगों के इस चिढ़ाने के भाव का कभी भी बुरा नहीं माना। और इसीलिए माना जाता है कि उन्होंने 13 पंथी नाम एक्सेप्ट कर लिया। और इसी तरीके से आचार्य भिक्षु के द्वारा ये जो धर्म घोष था इसको 13 पंथ धर्म संप्रदाय के रूप में पॉपुलैरिटी मिली। और इसके बाद भिक्षु जी ने कई सारे डिबेट्स ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि उनके बहुत सारे ओपोनेंट्स थे जो कि आचार्य रघुनाथ जी से अलग होने के बाद भिक्षु जी पर विश्वास नहीं करते थे या भीखड़ जी की बातों को नहीं समझ पाते थे। और इसीलिए उन्होंने एक चातुर्मास ऑर्गेनाइज किया केलवा में, और जिसमें उन्होंने बहुत संयम बना के रखा, धैर्य बना के रखा, जिसकी वजह से उनके जितने ओपोनेंट्स थे उन सभी ने इनके सामने अपना सर झुकाया। स्वामी जी ने आषाढ़ी पूर्णिमा को 13 पंथ धर्म संघ की स्थापना भी केलवा में की थी। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और इसी से सिद्ध हो गया कि भीखू जी और उनकी सारी बातें कहीं ना कहीं आचार्य रघुनाथ जी की बातों से मेल खाती हैं। भीखर जी ने जितने भी अपने प्रचार प्रसार किए या फिर जैन धर्म की जो सैद्धांतिक बातें थी, इनको कॉमन लोगों में उन्हीं की लैंग्वेज में स्प्रेड किया था, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और भीखर जी की सबसे अच्छी बात ये निकल के आई कि उन्होंने कभी भी अपने विरोधियों यानी कि ओपोनेंट्स की बातों को माइंड न करके उनकी बातों को पॉजिटिव वे में लिया, जिसकी वजह से कभी भी उनके कोई दुश्मन निकल करके नहीं आए, बल्कि सबने उनके प्रति आदर और सम्मान का व्यवहार ही शो किया। और यही सब करते हुए 2 सितंबर 1803 ईस्वी में आचार्य भिक्षु का सिरियारी यानी पाली में डेथ हो गया, जिसको हम हिंदी में स्वर्गारोहण कहते हैं। आचार्य भिक्षु ने हमारे जो थॉट्स होते हैं उनकी प्यूरिटी पर बहुत फोर्स किया, पॉलिसीज बनाई, और उनका मानना ये था कि जो महावीर के उपदेश हैं यानी जो महावीर की प्रीचिंग्स हैं, वो हर समय चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, कोई भी सेंचुरी हो, हर सेंचुरी में यूजफुल है। और इसीलिए उनका मानना ये था कि आज भी उन कानूनों, उन नियमों, उन उपदेशों को फॉलो करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। वो रिलीजियस टॉलरेंट थे, इसका मतलब कि उनके सामने कोई भी धर्म बहुत ऊंचा या कोई भी धर्म नीचा नहीं था। उन्होंने हमेशा जो कम्युनल टेंशन्स रही हैं, उनको मिटाने की कोशिश की है, कम्युनल पीस फैलाने के बहुत सपोर्ट में उन्होंने काम किया। और उन्होंने जो उनके शिष्य थे यानी जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनको एक ही सजेशन दिया कि आप हमेशा किसी एक साधु महात्मा या सन्यासी के अनुशासन पर, मर्यादाओं पर चलने की कोशिश कीजिए। वैसे ये बात तो सच में मानी गई है कि अगर आप एक रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको कभी भी रास्ता बदलना नहीं चाहिए, जब तक कि आपको 100% श्योरिटी ना हो जाए कि वो रास्ता गलत है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कई बार आपकी पढ़ाई के टाइम भी ऐसे चांसेस आते हैं जब आपको लगता है कि हमें ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि दूसरी किताब पढ़नी चाहिए। कई बार कुछ स्टूडेंट्स के पढ़ाई का तरीका रहता है कि वो 10 किताबें रखते हैं लेकिन 10 किताबों में से एक एक चैप्टर पढ़ते हैं, यानी कि किसी एक किताब के 10 चैप्टर को नहीं कंप्लीट करते, और ये उनका एक वीक पॉइंट रह जाता है। और इसीलिए बड़े लोग यानी जो सक्सेसफुल लोग हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि आप 10 की बजाय एक ही किताब को 10 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ संदेश जो है आचार्य भिक्षु ने अपने शिष्यों को दिया था। उन्होंने अपने शिष्यों को ये भी सजेस्ट किया कि उनको साधुओं का जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिसको हम सिंपल वे ऑफ लाइफ कहते हैं। बहुत ज्यादा किसी से लेन देन ना करें। कोई अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये मानी हुई बात है बच्चों कि कभी भी कोई अगर गिफ्ट देता है तो उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन जरूर होता है। अगर वो आपको आज 5 रुपए का गिफ्ट दे रहा है तो कल आपसे कोई बड़ा काम निकलवाएगा, और इसको हम करप्शन में काउंट करते हैं। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने अपने शिष्यों को पैसे के लेन देन से दूर रखने को सजेस्ट किया। अधिक भोजन यानी कि सफिशियंट अगर भोजन हो गया हो तो उससे ज्यादा जो भोजन होता है उसको लेने से मना किया और ऐसे कई सारी चीजों पर पाबंदियां लगाई जिससे कि इंसान के अंदर लालच पनप सके। और इसीलिए हम मानते हैं कि जो जैन धर्म है महावीर के उपदेश हैं ये थोड़े कड़े हैं यानी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जो इनके फॉलोअर्स रहे हैं उन्होंने हमेशा से इन उपदेशों का कड़ाई से पालन किया है। तो इन सभी बातों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आचार्य भिक्षु ने एक वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया जिसको हम 13 पंथ के नाम से जानते हैं। उन्होंने डिसिप्लिन लाइफ पर बहुत फोर्स किया और एक ही गुरु आचार्य और एक शिष्य और एक विचार की पॉलिसीज को सजेस्ट किया अपने आसपास के लोगों को कि आप एक ही टीचर रखिए, एक ही शिष्य को चुनिए और एक ही विचार को फॉलो करते रहिए। और उन्होंने बोला कि धर्म की जो बातें हैं वो साधारण व्यक्ति के समझ में आनी चाहिए ताकि वो उसको फॉलो करके मोक्ष मार्ग यानी कि डिवाइन जिसको हम स्वर्ग कहते हैं उस रास्ते पर चल सके। और इन्हीं सारे जो कार्यक्रम भिक्षु ने किए इन्हीं सारे कार्यक्रम की वजह से भिक्षु को काफी सारी प्रसिद्धि और लोकप्रियता इन फ्यूचर मिली। और ये हमारा कंक्लूजन यहाँ पर खत्म होता है और इसी कंक्लूजन के साथ हमारा ये टॉपिक आचार्य भिक्षु का भी खत्म होता है। और आचार्य भिक्षु के टॉपिक के साथ साथ हमारा ये आज का चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं में क्या लिखा है। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को एज अ रिविजन पॉइंट रीड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके पहले पॉइंट में क्या लिखा है। तो पहले पॉइंट में लिखा है राजस्थान के महापुरुषों में जन नायकों, लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने लोगों को नया रास्ता दिखाया। पॉइंट टू, बापा रावल ने चित्तौड़ में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के बाद राज्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। पॉइंट नंबर थ्री, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के द्वितीय युद्ध से पूर्व कई बार पराजित किया। पॉइंट फोर, महाराजा अजीत सिंह को मुगलों के चंगुल से बचाकर वीर दुर्गादास राठौर ने स्वामी भक्ति की मिसाल कायम की। पॉइंट फाइव, महाराणा सांगा ने अपने नेतृत्व में विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा की दृष्टि से राजपूत राज्यों को संगठित किया। पॉइंट सिक्स, मालदेव व शेरशाह के मध्य 1554 ईस्वी में सुमेल का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। पॉइंट सेवन, महाराजा सूरजमल के समय जाट राज्य सर्वोच्च शिखर पर था। पॉइंट एट, सामाजिक जागृति के लिए गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। पॉइंट नाइन, मीरा लोकप्रिय भक्त थी, उन्होंने नारी स्वतंत्रता के भेद के विरुद्ध साहस के साथ आवाज उठाई। पॉइंट टेन, डूंगरपुर की भील बालिका कालीबाई ने अंग्रेजों से अपने गुरु की जान बचाने के लिए स्वयं के प्राणों का बलिदान किया। पॉइंट 11, पन्नाधाय स्वामी भक्ति और त्याग के प्रति मूर्ति थी। पॉइंट 12, वृक्ष बचाने के लिए अमृता देवी ने अपनी तीन पुत्रियों सहित प्राणों का बलिदान किया। पॉइंट 13, धर्म धरा व धेनु की रक्षार्थ जिन महापुरुषों ने अपने प्राण दे दिए वे लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। पॉइंट 14, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी तथा रामदेव जी प्रमुख लोक देवता हैं। पॉइंट 15, समाज सुधारकों में दादू, जसनाथ, जम्भो जी, रामचरण जी, आचार्य भिक्षु जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। और इसके साथ हमारा एक रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि हमें हमारी एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो पेज नंबर 77 पर जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसमें से पहले पार्ट में आपको एमसीक्यू दिया है और उन्हीं एमसीक्यू के सारे आंसर्स आपको सेम पेज यानी पेज नंबर 77 पर मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम इन क्वेश्चंस को न डिस्कस करके अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें आपको एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में जवाब देना है। और इसमें पहला जो प्रश्न है वो लिखा है, वीर दुर्गादास ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया। तो इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 65 के बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइंस में, जिसमें लिखा है कि अजीत सिंह से नाराज होकर दुर्गादास जोधपुर छोड़कर उदयपुर मेवाड़ में आ गया। और इस लाइन का मतलब यही है कि दुर्गादास ने अपना अंतिम समय उदयपुर में व्यतीत किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ। तो इसका जवाब हमें महाराणा सांगा के पैराग्राफ में देखने को मिलेगा जो कि है पेज नंबर 62 पर। इसमें लिखा है कि रायमल की मृत्यु के बाद सन 1509 में राणा सांगा मेवाड़ का महाराणा बना। और हमारे प्रश्न में भी यही पूछा है कि उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, और इसलिए इसका मतलब यही हुआ कि महाराणा सांगा कब राजा बने। तो इसका जवाब होगा 1509। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रामदेव के दो प्रमुखों के नाम बताओ। तो इसका जवाब काफी आसान है जिसमें हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, और इसका जवाब आपको पेज नंबर 71 पर जरूर मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा है, अमृता देवी कहाँ की रहने वाली थी। तो अमृता देवी राजस्थान में हेजड़ली गांव की रहने वाली थी। और इसका आपको अगर सटीक जवाब चाहिए तो आप पेज नंबर 67 में इस टॉपिक को डिटेल से वापस से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान बताइए। तो फिर से हमें पेज नंबर 71 पर मिलेगा कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म पोकरण के एक गांव में हुआ था। और अगर डिटेल में जानना है तो पेज नंबर 71 पर इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य भिक्षु ने कौन सा पंथ चलाया। तो हमने सबसे लास्ट क्लास में देखा था कि आचार्य भिक्षु के पंथ को जिस नाम से जाना जाता है उसे तेरापंथी कहते हैं, जिसको सबसे पहले एक पढ़ाने का शब्द माना गया, लेकिन जब आचार्य भिक्षु ने बुरा ना मान के बल्कि इसको पॉजिटिव वे में लिया तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन को तेरापंथ के नाम से जाना गया। और इसका जवाब आपको पेज नंबर 76 पर डिटेल में मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसका जवाब पाना बहुत मुश्किल नहीं है, इसीलिए इस सीरीज का ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रही हूँ। आप इसका जवाब पता लगाइए और अपनी नोटबुक में नोट करिए। इसके बाद हम जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि पूछता है, महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो इसका जवाब होगा, महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। और इसके साथ हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की सीरीज यहीं पर खत्म होती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है, कालीबाई के बलिदान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों, हमने पेज नंबर 69 पर देखा कि कैसे कालीबाई जो थी उन्होंने अपने अध्यापक के लिए आवाज उठाई थी, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो आप पेज नंबर 61 की हेल्प से इस आंसर को डिटेल में लिख सकते हैं, मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, लोक देवता पाबू जी का महत्व बताएं। तो इसका जवाब हमें पेज नंबर 71 पर मिलेगा, पाबू जी नाम के टॉपिक में। और ये कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी मैं आप पर छोड़ रही हूँ कि आप पता लगाइए कि लोक देवता पाबू जी ने ऐसे कौन से काम किए जिसकी वजह से हम उनको हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, देव नारायण की फड़ क्या है? तो बच्चों, मैं आपसे माफी चाहूंगी क्योंकि ये जवाब मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास आपके टीचर्स अवेलेबल हैं और आपके गार्जियंस भी हैं, तो हो सकता है कि आप में से किसी के गार्जियन को पता हो कि फड़ क्या होता है। मैंने चैप्टर रीड करते वक्त भी आपको कहा था कि मुझे फड़ का मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, तो इसका जवाब आप खुद ढूंढिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है, मीराबाई के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जब हमने जन नायकों के बारे में पढ़ा था तो सबसे पहले जो महिला हमने डिस्कस किया वो थी मीराबाई, पेज नंबर 63 पर। हमने देखा कि कैसे इनका जो डिवोशन था वो कृष्ण जी की तरफ था, जिसकी वजह से जो उनके वहां के राजा थे वो खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सोसाइटी के सारे फाउंडेशंस को ब्रेक करके अपना नाम एस्टेब्लिश किया हिस्ट्री में। तो आप एक बार फिर से अगर चाहते हैं तो पेज नंबर 63 पर जा करके इसको डिटेल में पढ़िए और अपने इस सवाल का जवाब जरूर लिखिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पन्नाधाय के बलिदान को समझाइए। तो हमने पेज नंबर 64 पर पन्नाधाय के बारे में पढ़ा था, जो कि एक बहुत बहादुर महिला थी और इन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दिया था राजा के पुत्र को बचाने के लिए। ये हुआ एक छोटा सा हिंट, और बाकी जो जवाब है वो आप पेज नंबर 64 पर पन्नाधाय के टॉपिक को फिर से पढ़ के जरूर लिखिएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जसनाथ जी के सामाजिक सुधारों को बताइए। तो ये हमने पढ़ा था सामाजिक सुधार में पेज नंबर 74 पर जसनाथ जी के बारे में, जिन्होंने बाकी भक्ति संत की तरह रिलीजियस हार्मनी, पीस एंड टॉलरेशन के फैक्टर्स पर ज्यादा जोर दिया था। और ये एक छोटा सा हिंट है कि आपको अपने आंसर्स में क्या मेंशन करना है। बाकी इसका पूरा जवाब पेज नंबर 74 पर जरूर मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिश्नोई का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये हमने पढ़ा था, बिश्नोई समाज का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था 20-1, यानी 20 में से एक घटाना, इसको बिश्नोई शब्द के नाम पर रखा गया था। तो ये आप लिख सकते हैं अपने जवाब में। और इसी के साथ हमारी आज का एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होता है, क्योंकि जो निबंधात्मक प्रश्न है वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसे के फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बढ़िया से समझ चुके हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। और उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो अपने टीचर्स की हेल्प से इन एसेज को जरूर कंप्लीट करिएगा। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।